हरे कृष्ण सर्वपरिभक्ष प्रकाशिंदुभ्यवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने यं प्रव्रजं तमते तमते पतित्यं द्वैपायनो गिरहकात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथा आज हम लोगों का सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग व्यास पूजा कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु अखंड गुरु तत्व व्यास जी हैं, यह तो बलदेव प्रभु जी हैं, किंतु आज व्यास जी का जन्म तिथि है। व्यास किसको कहते हैं? एक वृत्त के एक पॉइंट से कोई रेखा निकलकर मध्य बिंदु को छूती हुई सीधी भी निकल जाए तो उसको व्यास कहते हैं। एक सर्किल के किसी भी पॉइंट से कोई सीधी रेखा खींचती हुई मध्य बिंदु को पार मिलती हुई सीधे निकल करके वृत्त के दूसरी ओर वो छू ले तो ये व्यास है। व्यास माने होता है विस्तार, व्यास माने होता है व्यास विस्तार करना, तो व्यास माने होता है विस्तार, व्यास माने होता है व्यास विस्तार करना, तो व्यास माने होता है विभाग करना। एक सर्किल को एक ब्रह्मांड को एक बिंदु से बीच में कौन है कृष्ण, उनको छूते ही दूसरी किनारे तक चली जाती है तो ये व्यास हो जाता है। एक ब्रह्मांड को कोटि कोटि भागों में विस्तार करती है, जिस वो जो होती है वो कितने कोण की होती है, 180 डिग्री की बन जाती है, और उसका आधा फिर का तो वो 90 डिग्री का वो बन जाता है, किंतु ये पूरी नहीं है। पूरी कब होगी? जब एक सर्किल के एक पॉइंट से लेकर पूरे वृत्त को दो भागों में विभाग कर देगी और सर्वत्र व्याप्त हो जाएगी तो उसको व्यास कर। वेदों का भी भाग किया और विश्व में सर्वत्र कृष्ण का विस्तार किया, ये विस्तार अर्थ से हुआ व्यास। कैसे विस्तार किया? उन्होंने अपनी मैया के आग्रह से, वे पैदा कहाँ हुए? मथुरा के कृष्ण गंगा घाट। बस अच्छा दिन है, अच्छा दिन है, एखने अच्छा मार के हमारे पुरानो गुरु भाई नाम हो मधुसूदन महाराज, तो प्राचीन लोग विद्वान लोग सिद्धांत भी और जो वो क्या बतला रहा था, ये पराशर से जगत में प्रकट हुए सत्यवती के गर्भ में और फिर अंबालिका के गर्भ से उन्होंने पांडु धृतराष्ट्र पांडु और विदुर तीनों को प्रकाश किया, जिसमें विदुर जो है वो भक्ति नीति वाले, वो सबसे उनके प्यारे हैं। और एक काम किया, दीपिका के गर्भ से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी को प्रकट करना ये विशेष बात हुई। कैसे विशेष बात हुई? ये सुखदेव गोस्वामी ने ही उनकी मनोभिलाषा पूर्ण की। वो क्या है हमारे रूप गोस्वामी के लिए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, और यहाँ पर है व्यास अवभीष्टम, व्यास जी का मनोभीष्ट इन्होंने प्रकाश किया, इसके सुखदेव गोस्वामी के मुख से। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की अभिलाषा के हमारे रूप गोस्वामी ने प्रकट किया, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी। दूसरी बात, जन्म लेने के बाद में उनका प्रधान कार्य हुआ व्यास, वेदों का अभ्यास किया, विभाग किया। वेद तो पहले एक अथर्व वेद था, पीछे के अनुक्रमण क्या से चार तीन विभाग किए, और उस विभाग में भी और विभाग किया चारों वेदों में से। एक कर्मकांड यज्ञ, जिसमें ऋतिक इत्यादि का जो यज्ञ करेंगे, उसमें धर्म अर्थ धर्म काम और मोक्ष पहले वाले में, और दूसरे वाले ब्राह्मण विभाग। ब्राह्मण विभाग में उपनिषद प्रधान, उपनिषद माने क्या, उपनिषद जो जगत का सृजन इत्यादि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, उस ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है, वो वेदों उपनिषदों के माध्यम से ये बतलाया गया। वेद भगवान की मुखारविंद की वाणी है, और जिसमें उपनिषद ये प्रधान विभाग है, उसमें उनके संबंध में बतलाया गया। व्यास जी ने उनका विभाग किया, और विभाग करके उसमें उपनिषद भाग का सार संकलन किया, और संकलन करके ये बतलाया, संकलन करके उन सूत्रों के माध्यम से 550 सूत्रों का उन्होंने रचना की, और ये बतलाया कि वेद पर ब्रह्म का ही वो प्रतिपादन करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, जो जिनका आकार है, जिनका गुण है, जिनका रूप है, जिनकी लीलाएं हैं, ऐसे आनंदमय ब्रह्म का निरूपण करते हैं। उसमें से जो परस्पर विरोधी बातें हैं, इन दोनों का सामंजस्य किया। भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रूप है, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, इसलिए दोनों का सामंजस्य करके बतलाया कि वेद की जितनी भी बातें हैं, उपनिषद की बातें हैं, उनमें कहीं भी विरोध नहीं है, सबका सामंजस्य है, ये बतलाया। अंत में इसके लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की। उन्होंने वेदों के विचारों को जानने के लिए वेदों को अर्थ सुगम नहीं है, बड़े कठिन है, विशेष करके उसका संस्कृत की भाषा साधारण नहीं है, इसलिए वो समझ में आए बोधगम्य भाषा में, और उदाहरण के साथ में बतलाने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना। पुराण मैंने क्या, जो वेद के अर्थ को पूर्ण करते हैं उनको कहते हैं पुराण। इसलिए वेद के अर्थ का प्रतिपादन करने वाले हैं पुराण, ये पुराण वेदों से भी पुराने हैं। पुराण आधुनिक नहीं है, बहुत लोग कुछ कहते हैं कि यह गलत है, आचार्य है अश्विन आते घन बसु, तो उनका प्रतिपादन करते हैं पुराण, किंतु पुराण भी इतने सुगम नहीं है। वो इस टाइप में कहे गए हैं कि उसकी कहीं कहीं पर उसका अर्थ बड़ा दुरूप है। ए भाई लड़कों खटाओ यहाँ से, तो बहुत गंभीर इसके अर्थ हैं। इसलिए उन्होंने जो ब्रह्मसूत्र लिखा था उसके अर्थ को और अच्छी तरह से सूत्र भी पढ़ सकें और साधारण आदमी भी समझ सकें, सबके लिए बोधगम्य हो। वेद स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, उनका उपनयन नहीं हो सकता, इसलिए सब लोगों के लिए स्त्री शूद्र और सब जितने भी लोग हैं उनके लिए महाभारत की रचना की, वो वेद का ही एक प्रकाश है, पंचम वेद है। तो भी कुछ बातें रह गई, चित्त जी व्यास जी का चित्त संतुष्ट नहीं हुआ, खिन्न है, सोचने लगे कि मैंने सब कुछ किया, क्या बाकी रह गया जिससे कि मेरा चित्त खिन्न है, कोई मुझको तृप्ति नहीं हो रही। ये सोच करके सम्यक्प्राप्त स्थान में नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे जो सरस्वती त्रिवेणी में आकर के गंगा और यमुना से मिली है उसकी स्थिति है, अब वो लुप्त हो गई। अब सरस्वती नदी उसी के किनारे सम्यक्प्राप्त स्थान में वहीं पर खिन्न चित्त होकर के बैठे थे। उसी समय नारद ऋषि आए, नारद ऋषि आए, उनका चित्त खिन्न देखा। उन्होंने पूछा, नारद जी आप तो जगत के धर्म गुरु हैं, वेदों का विभाग किया, उपनिषदों का अर्थ प्रकाश किया, महाभारत की रचना की, ब्रह्मसूत्र का प्रकाश किया, किंतु आपका चित्त खंड है, आपने तो सब कुछ किया, प्रसन्नता है। शिष्य बोले, गुरु जी मुझे जो रोग है मैं नहीं समझ पा रहा, गुरु सब रोगों को समझता है, शिष्य नहीं समझ सकता क्या रोग है उसे, मेरा चित्त खिन्न है क्यों, मैंने तो सब कुछ किया। कृपा करके नारद जी ने बतलाया, ये व्यास जी कौन है, स्वयं नारायण है, किंतु फिर भी नारायण होने पर भी वो बतला रहे हैं, उनको व्यास जी, उनको नारद जी बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, तुम्हें अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए जो शास्त्रों में तुमने कहा है, प्रकाश किया है, किंतु तुमने स्वयं भगवान जो हैं, भगवान कौन है स्वयं, उनकी लीलाएं क्या हैं, उनकी कृपा कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, विशेष करके ब्रज की लीलाओं का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त खिन्न है, इसलिए आप इन लीलाओं का वर्णन करें, वेदों के पाठ से जो नहीं होगा, उपनिषदों के पाठ से जो नहीं होगा, महाभारत के पाठ करने से नहीं होगा, ब्रह्मसूत्र के पाठ करने पर भी जो वो नहीं होगा, उसे चित्त प्रसन्न नहीं होगा, आप भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन करें, इसी के द्वारा आपको संतुष्टि है। उन्होंने कि कैसे मैं करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं तो जनता नहीं कुछ इस विषय में, उनकी मधुर लीलाओं के संबंध में। ठीक, अभी यार हमारा पास जारी है, ठीक। भक्ति योगेन मनसि अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच जदा पाप या समोहितो जीवन सिद्धात्मक इत्यादि। तुम जाओ भक्ति योग से चित्त को समाधिस्थ करो और इसी योग से तुम भक्ति योग के द्वारा भगवान का संपूर्ण उसमें दर्शन कर सकते, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, ध्यान के द्वारा नहीं होगा। भक्ति योग क्या है? भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण है। पहला यही से दरवाजा आरंभ हुआ, संपूर्ण से उनके चरणों में आत्मसमर्पण, संपूर्ण से आत्मसमर्पण, और फिर तब भगवान की लीलाओं का चिंतन करें। उनके ऐसा करने से चित्त को समाहित होकर के, आत्मसमर्पण होकर के चिंतन। भगवान स्वयं कृष्ण राधा जी के साथ, गोपियों के साथ, अपनी मैया, पिता और परिकरों के साथ उनके हृदय में आविर्भूत हुए, और जन्म से लेकर और अंत तक की जितनी भी लीलाएं हैं एक के बाद दूसरी जैसे फिल्म में आती हैं, ऐसे सब लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उन्होंने देखा अपश्यत पुरुषम पूर्ण, पूर्ण पुरुष कौन है? कृष्ण स्वयं है। इसके पहले वो उपनिषद ब्रह्म पूर्ण नहीं है, वो उनके अंग की कांति है, छाया है, उनके चित्त स्वरूप की एक विकृति प्रतिफलन है। परमात्मा भी उनके अंश के कला है। कृष्णस्तु भगवान, ये कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान का फल है। वदन्ति तत्त्व विदः तत्त्वम् विज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान तत्व। अद्वैत ज्ञान तत्व मैंने चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के, माया शक्ति और उससे प्रकाशित होने वाले, उसके रूपांतर होने वाले परिणाम के स्वरूप में जो अनंत कोटि जीव है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, भगवान के जो अवतार समूह हैं, उनके कलाएं हैं, उनकी विभूतियां हैं, ये सब मिला करके एक भगवान अखंड है। अलग कोई दूसरा कुछ नहीं है जो स्वतंत्र जीव की शक्ति है, कुछ भी अलग नहीं, सब उसी के अंतर्गत में है। दर्शन करके और जस्या वही सूयमानायं पुरुषे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्यते पुंसान शोक मोह भव, जीवों के कल्याण के लिए उसका संकलन, वही संकलन क्या हुआ? समाधिगत भाषा ये श्रीमद्भागवत है, जो ब्रह्मसूत्र का भी अर्थ है। ब्रह्मसूत्र में पहला श्लोक है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य जतः, जिसे उनका उसका ये दिया क्या, जन्मादस्य जतः अन्वयादि तरतश्च अर्थो अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म विदा जाद कवे मुह्यंत जत सूर्य तेजो बार निदान जता जत्र विनमय तिसर्गो अमृषा धामना श्रेन सदा निरस्तुम सत्यम। पर सत्य ये कृष्ण कौन है? सत्यम परमधीमहि, उनकी राधिका जी हैं सत्यम। बचो अभी बच जाओ, कोई अभी मत आए, अभी चुपचाप अपने आसन पर बैठ और कल आकर के पूजा जैसा है उसका। अब वो भी परम सत्य नहीं है, सत्यम परमधीमहि, उनकी शक्ति जो राधिका है सत्यम परमधीमहि, गायत्री है ना, गायत्री में है ना धीमहि, तो ये गायत्री कौन है? स्त्रीलिंग शब्द है गायत्री, तो ये गायत्री हुआ शक्ति ना, ये मत समझना ये ब्रह्मा की पत्नी, उनको भी प्रकाशित करने वाली कौन है? श्रीमती राधिका जी हैं, वो है राधिका जी सत्यम पर, वहां पर धीमहि ध्यान है, उसी का ये ले गायत्री का अर्थ है, इसलिए इसका अर्थ यह होगा सत्यम परम धीमहि, जो परम धाम में कृष्ण के साथ में विहार करके कृष्ण के चित्त को भी हरण कर लेती हैं, ऐसी राधिका जी सत्यम परम सत्यम धीमहि, वो परम सत्य है। और फिर वहां पर भी आएगा कस्मै येन विभाषितो, कस्मै माने ब्रह्मा जी, कह उनके द्वारा, नारद नारद के द्वारा, व्यास व्यास के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी परंपरा के द्वारा जिस श्रीमद भागवत का सत्यम परम का ये प्रकाश हुआ है, वो सत्यम परम
समधिमयी वो श्रीमती राधिका जी जो कृष्ण की पराशक्ति हैं, जिसके अंदर में प्रेम निवास करता है। प्रेम कहाँ रहता है? अखंड रस कृष्ण है, किंतु होने पर भी यह रस कहाँ से आता है? यदि राधिका न रहे तो कृष्ण क्या हो गए? निर्विशेष ब्रह्म हो गए, सगुण बन जाएंगे, निर्गुण नहीं बन सकेंगे। इसलिए ये सब रस जो है कृष्ण जो अखिल रसामृत मूर्ति हैं, वो किस लिए हैं? राधा जी के लिए। इसलिए श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्रेम। तो प्रेम जिसमें है वो यहाँ पर बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम इत्यादि कहा गया। इसलिए व्यास जी को बतलाया नारद जी ने, कहीं श्रीमद भागवत में कहीं दूसरे शास्त्रों में कहा जो स्वयं ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर स्वयं भगवान ने कहा? नहीं, उनकी लीलाओं का वर्णन किया, वर्णन तो किया किंतु वासुदेव को प्रधान रखा, और उनकी पूजा से मोक्ष मिलेगा, धर्म कर्म ये सब मिलेगा, प्रेमा भक्ति का उन्होंने वर्णन नहीं किया। और ऐसा करने से ऐसे मालूम हुआ जो कि वे नारायण और दूसरों की कैटेगरी में आ गए, विशेष करके शंकर ब्रह्मा गणेश शक्ति इनमें कोई ठीक से विचार नहीं कर सकता जिनमें कौन परतत्व है। यदि पुराणों को पढ़े तो एक में ब्रह्मा विष्णु मैं कभी गणेश कभी सरस्वती कभी लक्ष्मी कहीं कुछ, विष्णु के संबंध में कहीं कहीं लिखा, किसे पता नहीं चलता। एक आदमी चौमाहे पर आकर के खड़ा हो जाता है, किधर जाना है वो कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए नहीं समझ पाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत यदि ग्रंथ नहीं होता तो ये बातें नहीं होती। उसमें ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण जम यहां तक कि कामदेव सबको कृष्ण ने परास्त किया है श्रीमद् भागवत। जो कहीं भी लीला नहीं प्रकाशित हुई कृष्ण की, ऐसी लीला जो है वो गोपियों के साथ में रास भ्रमर गीत गोपी गीत वेणु गीत कहीं नहीं है, प्रेम का कहीं भी प्रकाश नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? प्रेम का ग्रंथ। कैसे? निगम कल्प तरुर्गलित अंग फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम बहु रहो रसिका। विशेष करके कुछ दिन पहले तक आज तो कुछ पढ़ते नहीं है, जानते भी नहीं है, किंतु तो अभी वेदांत तो सूत्र पर जो जिसने अध्ययन नहीं किया और उसके जो आचार्य ने उनको आचार्य नहीं माना जाता, जैसे शंकराचार्य उन्होंने उस पर लिखा टीका लिखा भाष्य इसलिए आचार्य माना गया, रामानुज मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निम्बादित्य इत्यादि सभी लोग आए उस पर एक एक टीका टिप्पणी अपना भाष्य लिखा। किंतु विशेष करके ये जो पांच सूत्र हैं अभी हमारे भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी बतलाएंगे, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादर्श जत शास्त्र जोनी त्या, शास्त्र जोनी त्वात माने शास्त्र की जोनी है या शास्त्र ही जोनी है उनको जानने का उपाय है, बिना शास्त्रों के ये नहीं जाना जाएगा। क्यों बतलाया? बतलाया ना क्या असत क्या है जिसको अशब्दार्थ है ना क्या है? नहीं नहीं तो भगवान अशब्द हैं, अवांग मनसो गोचर हैं लोग को कहें इसलिए उनका रूप नहीं, ऐसा नहीं। क्या है तब? उनका रूप है, और रूप कैसे आएगा? केवल आनंद ही नहीं है बल्कि आनंदमय अभ्यास आनंद में है, और शास्त्र की जोनी है, शास्त्र के द्वारा उनको जाने जा सकता है, ऐसा नहीं शास्त्र के द्वारा अपाच्य नहीं है, ऐसा नहीं शंकराचार्य ने सह बतला किन्तु यह गलत बात है। तत्व समन्वय शास्त्रों का समन्वय किस में है? शास्त्रों में विविध प्रकार के उनके वेद हैं। वेदैश्च सार्वम अहम् एव वेद्य, सभी का शास्त्रों में भगवान के लिए ही समन्वय है। जितने भी वाक्य हैं सब परब्रह्म कृष्ण के लिए हैं। ओ इखते न शब्दम, इखते न शब्दम, इखते भगवान अशब्द नहीं है, जो शब्द के द्वारा उनको नहीं जाना जाएगा। कैसे हैं वो? इखते वो देखा जाता है, अभी संराधने प्रत्यक्ष अनुमान अभ्याम, संराधना के द्वारा भगवान के नाम के द्वारा उनको देखा जा सकता है, इसलिए अशब्द नहीं है। इखतर न अशब्द, इखते न शब्द, अशब्द नहीं है, शब्द के द्वारा उनको जाना जाता है, भागवत के द्वारा जाने जाएगा, शास्त्रों के द्वारा जाने जाएगा। गौनश्चेन्न अशब्द, वो लक्षण वृत्ति से अर्थ नहीं किया जाएगा, जो सो उनसे सृष्टि जगत की स्थिति प्रलय होता है, ये गौण ब्रह्म से होता है, सगुण ब्रह्म से, ऐसा मत मत समझो। कैसे होता है? परब्रह्म की इच्छा से ही होता है, इसलिए अभिधा वृत्ति की सही द्वारा उनको जानना हो इत्यादि ये सब बतलाया है। उसी की ये व्याख्या श्रीमद भागवत, उसी का ये अर्थ है। अर्थवयम ब्रह्म सूत्राणाम भातार्थ विनिर्णय गायत्री भाष स्वरूप और सब वेदार्थ, वेदों को अर्थ को ये प्रतिपादन करने वाली है, ऐसे इसको प्रकाशित किया। केवल यही नहीं, निगम कल्पतरो गलितं फलम सुख मुखाद अमृत संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूगा। क्या तात्पर्य? निगम कल्पतरो, गीता जो है उपनिषदों का वो सार है, केवल उपनिषदों का, और श्रीमद भागवत क्या है? जैसे कि गीता में कहा गया ना, सर्व उपनिषदों गावो, गाय है उपनिषद, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन, दूध दुहने वाले गोपाल नंदन, और पार्थो वत्स, और पार्थ क्या है? बछड़े हैं, दूध को थान में ला दिया और कृष्ण ने हटा दिया, ये दूध उन्हीं के लिए नहीं है, वो भी पिए, और किसके लिए है? सारे जगत के भुक्ता के। तो वो समस्त उपनिषदों का सारे ये बात ठीक है, किंतु भागवत क्या है? निगम कल्पतरु गलितंग फलम, निगम कल्पतरु, सारा वेद समूह निगम, ये कल्पतरु है, और उसका ये प्रपक्क गुठली और किसी भी हे अंश वर्जित, यह रस ही रस है, गुरु परंपरा के माध्यम से इस जगत में वो प्रकट हुआ है। और उसमें है क्या? रस ही रस है, एकदम पहले से ही अंत तक है। कुछ चीजें एक से लेकर के नौ तक ऐसा मालूम पड़ता है कि उसमें रस कम है, किंतु ऐसा मत समझो। ऐसा कोई अध्याय नहीं है, कोई श्लोक नहीं है जिसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है। यदि गंभीर रूप से देखा जाए, प्रहलाद चरित्र ऐसे दिखता है, किंतु उन्होंने जो वर्णन किया भक्ति का विचार, उसमें बहुत सी चीजें हैं। चित्रकेतु इत्यादि के उपाख्यान में पहले उद्धव जी जब आए हैं, कृष्ण ने भेजा, उद्धव जी के जाने के समय में ये सब रस छलकता है उसमें, विशेष करके उनके जन्म के समय में जसोदा मैया का लाड़ प्यार, और इसके बाद में नंदा किम करो ब्रह्मन श्रेय एव महोदय, जसोदा चा महाभागा, जसोदा जी ने ऐसा कौन पूर्व जन्म में तपस्या की जे कृष्ण ने उनका दूध पान किया? कौन सी तपस्या की? गोदी में नहीं ले रही परब्रह्म को, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ये कौन है? ऐसे ईश्वरों के, ईश्वरों के ईश्वर के, परमेश्वरों के सर्वेश्वरेश्वर वो कृष्ण है, और उनको गोदी में नहीं ले रही, दूध नहीं पिला रही, जो सुधा जी ने ऐसा कौन तपस्या किया? तपस्या से ऐसा नहीं होता, उनकी नित्य माता है। नंद बाबा ने क्या कहा? जो अपनी खड़ाऊ ले आओ और अपने सिर पर रख करके नाचते हुए जा रहे हैं, नंद बाबा खा रहे हैं, कृष्ण को भी अपना जूठा खिला रहे हैं, कोई करेगा कृष्ण को खिलाएगा? ये तो जसोदा नंद बाबा ही कर सकते हैं, उनके सखा लोग कर सकते हैं। कल देखो और इसमें उनको बैठा लिया, और बैठा करके क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं। जब उनका पेट भर गया तो फिर बाकी खाए, कैसा उनका सौभाग्य है। और गोपियों ने कौन तपस्या की, बढ़ाता बड़ भागिनी बेकार की बात ये ठीक नहीं। कृष्ण को कौन प्रकाश करता है, ऐसा मत सोचिए कृष्ण उनको प्रकाश करता है, किंतु ऐसा ही कहा जाता है। उपाय का ही शब्द नहीं है, कहा जाता है कृष्ण के वाम भाग से राधा जी प्रकाशित, किंतु जोग माया समामृता, मैं अपनी जोग माया से अपने को प्रकाश करता है। ये जोग माया का मूल कौन है, इसलिए राधा जी से ही कृष्ण प्रकाशित होते हैं, ये सारा विश्व और सब कुछ प्रकाशित होता है, ऐसे समझो। ऐसे जो ये है निगम कल्प तरु है, इसको रसिक लोग और भावुक लोग दूसरे नहीं। रसिक माने कौन, रसिक माने कौन, ये रस को समझने वाले, जिसके अंदर में शुद्ध सत्व के साथ में स्थाई भाव, विभाव अनुभाव इत्यादि सब अब मिल रहे हैं, रस हो रहा है, ये रसिक। और भावुक कौन है, भावुक वो हैं जिनके अंदर में प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, ये भाव आगा है, वो भाव के साथ में राधा कृष्ण का चिंतन और सेवन करते हैं, वो भय भाव, ऐसे भाव के लोग इसको पढ़े, दूसरे नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए संभव पर नहीं है। इसलिए रास पंचाध्यायी अथवा भ्रमर गीत वेणु गीत ये साधारण लोगों के लिए नहीं है, ये श्रीमद् भागवत के पांच प्राण, और उस पांच प्राणों में भी मुख्य प्राण ये हैं, कौन रास लीला इत्यादि, सबसे श्रेष्ठ लीला है, महाशक्तिमान है। प्रहलाद महाराज जी की कथा सुनने से भक्ति होती है, बात ठीक है, मुक्ति भी हो जाएगी और उनको वैकुंठ की गति भी हो जाएगी, ब्रज की भक्ति नहीं होगी, होगी उससे नहीं होगी, ब्रज भक्ति के लिए कुछ और चीज चाहिए। गोपियों का अनुगत इत्यादि चाहिए, इसमें उन्होंने बतलाया, सुखदेव गोस्वामी ने व्यास जी ने इस चीज को बतलाया, जब तक इनका परिपक्व ज्ञान नहीं होगा उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए व्यास जी की ये देन है। रासलीला इत्यादि उन्होंने देखा समाधि की स्थिति में और तब लिखा, इसलिए ये सब लीलाओं में चक्रवर्ती चूड़ा है। जो लोग ये कहते हैं नैतत् समाचरे तुजातु मनसपिहि अनिश्वर विनश्यत आचरण मौढ्यात्, जो अभी रुद्रत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात काम क्रोध इत्यादि को विजय नहीं कर सके हैं, जिनमें अनर्थ है, ऐसे लोग भगवान की इन लीलाओं को श्रवण न करें। जो कहते हैं हम समझते हैं कि उसका अर्थ नहीं जानते, संपूर्ण अर्थ नहीं जानते, नैतत् समाचरे उसमें सुत्वा श्रवण के लिए कहां कहां मना किया जाए, नैतत् समाचरेत मनसपि, मन के द्वारा भी आचरण मत करो, कैसा आचरण मत करो, कृष्ण ये आचरण मत करो ये लिखा, सुनने के लिए माना कहां कहां गया, कहीं नहीं मना किया। जो लोग हैं दूसरों को पट्टी पढ़ाते हैं, प्रभुपाद जी ने कुछ कहा दूसरे विचार से कहा, उन्नत व्यक्ति लोग इसका श्रवण नहीं करेंगे उनका कल्याण नहीं होगा, इसलिए बतलाया काम को दूर करने आ, अन्य कथाओं के द्वारा नहीं होगा, ये किसके द्वारा होगा, रासलीला चूड़ा चक्रवर्ती शक्तिमती है उसके श्रवण से, किंतु कैसे होगा, आचरण मत करो। आगे भी बतलाया गया कृष्ण ने जो कहा और जो किया, किया को मत आचरण मत करो, और अपने मुख से कहा जी इसका आचरण करो उसका आचरण करो, जो लीला उसके अनुकूल है, कृष्ण कह रहे हैं ये लीला का आचरण करो, कैसे, माता पिता को जो सम्मान दिया करो, और दूसरे जो धर्म का आचरण किया करो, गोवर्धन को धारण किया करो तो देखे, करो ना, बीज का पान करो, आग का पान करो तो देखे, जरा करो तो देखे, तब काली के ऊपर में नाचो तो एक सांप के ऊपर में। इसलिए कहा कि हमारा आचरण से मत करो, क्या करो, हमने जो उपदेश दिया और हमारा उसमें जो आचरण जो किया है उसका तुम आचरण कर सकते हो, हमारी सब लीलाओं का आचरण मत करना, तो मरेगा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, इसके पहले ही श्लोक में कहा, भगवान कृपा करके अपनी लीलाओं के साथ में जगत में अवतरण किया है, उसमें उन्होंने जो लीला किया उसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। वो पद है ना, क्या क्रिएत, क्रिएत माने क्या, ये विधि लिंग है, भवे तत्परो भवे, तत्परो भवे मैंने क्या, तत्पर हो, किसके लिए, उन्होंने जो ये लीलाएं की हैं उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, यदि नहीं करता है तो तुमको पाप लगेगा, पतवाएगा। चैतन्य चैतामृत में स्पष्ट रूप से लिखा, क्या कहा, जरूर करो अन्यथा तो पतवाय होगा। इसलिए विकृतम ब्रज वधुहि दंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रणीया तथा परणीत भक्ति परम प्रतिलभ्य कामो हृदरोग मासुम अपिहृत्य। धीर व्यक्ति, धीर व्यक्ति माने साधारण रूप में बुद्धिमान होता है, यहाँ पर धी माने क्या, भगवान की ये जो लीलाएं हैं श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों में ऐसा लिखा श्रवण करना चाहिए, और इसके द्वारा काम रूप पहले क्या होगा, प्रेम भक्ति प्रकाशित होगी, और उस प्रेम भक्ति के द्वारा जितने प्रकार के काम हैं दूषित चीजें हैं सब निकल जाएंगी। पहले सूर्य का प्रकाश होगा तब अंधकार दूर हो जाएगा, अंधकार दूर करके सूर्य आता है, सूर्य आएगा प्रकाश होगा, ऐसा नहीं कि पहले अंधकार को दूर कर दो तो फिर सूर्य को ला, ऐसा नहीं, जितने जितने में तत्व ज्ञान आएगा भक्ति आएगी अंधकार दूर होता जाएगा, अनर्थ दूर होगा, ऐसा नियम है। इसलिए पहले भक्ति होगी श्रद्धा पूर्वक सुनने से भगवान की लीला कथाओं को, और फिर क्या होगा उसके द्वारा प्रतिलब्ध कामम प्रेम लाभ करेगा, और उसके बाद में अपिहनत अचिरे नजीरा, वो काम जो जगत का काम है वो दूर होगा, ऐसे नहीं होगा। नारद जी को भी छका दिया, ब्रह्मा जी को छका दिया, सब लोगों को, विश्वामित्र को हजार बार छका दिया, ब्रह्मा जी अपनी लड़की देकर के मोहित हो गए, शंकर जी मोहिनी के पीछे पीछे अपना लंगोट और दोर कौपिन और क्या कहते हैं मृगछाला चमरू और कहां कहां छोड़ करके भागे उनके पीछे पीछे। इसलिए इसे नहीं होगा, इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरु के मुख से अनुसुणिया निरंतर श्रवण करें। कैसे, अनर्थ रहते हुए तो श्रवण करना है तो काम कैसे दूर होगा, तो काम तो अनर्थ है। इसलिए उस अवस्था में श्रद्धा पूर्वक सुने, और सुन करके क्रमशः सुनते सुनते उसका हृदय रोग सब दूर हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, और तब इन लीलाओं के साथ में कृष्ण तुम्हारे हृदय में प्रकट हो। इस तरह से ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को दिया। गणेश जी को कहा जे लिखो, जैसे ही हमें इनका मुहर्री बनूंगा, मैंने कहा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हाँ कुछ दिन के लिए बन जाना, तो उन्होंने एक लगा दिया सर, मैं लिखूंगा, मेरी लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए, सब समय चलनी चाहिए, आने तो मैं नहीं लिखूंगा। व्यास जी ने कहा जी हाँ तुम लिखो, तुम्हारी लेखनी बंद नहीं होने देंगे, किंतु सोच करके लिखना, बिना सोच करके विचार, बिना विचार के तुम्हारा सिर उड़ जाएगा, अभी तो हमारा असल सिर तो शिव जी ने काट लिया, और बाकी जो दूसरा हाथी का मुंड है वो भी चला जाएगा, इसलिए सावधानी से समझ बूझ करके लिखना। इसलिए बीच बीच में व्यासकूट लगा देते और अर्थ सोचते हजारों श्लोक बना करके रख देते। अभी हमारे गणेश जी प्रणम में है, लिखा तो और अर्थ समझ करके लिखा तो कुछ समझा, बिना समझे तो वो उड़ी जाता शरीर, तो कुछ समझा है, इसलिए वो भी हमारे नमस्कार, लेकिन तो भागवत में कहीं भी उनका कोई चरित्र नहीं बढ़ा। वृंदावन से उनका कोई भी संबंध नहीं, इसलिए व्यास जी का आज आविर्भाव तिथि है। दूसरी बात, आज है सनातन गोस्वामी काल के, तो कल उनके संबंध में हम बतलाएंगे। अभी थोड़ा सा हमारे भक्ति वेदांत तत्व महाराज जी कुछ इस विषय में अपना विचार रखें संक्षेप में।
भागवत में कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें
मायावादी माया का कार्य है, यही माया का, माया कराते हैं तो लोग जगत से चले जाएंगे। मैं दो चार शब्द और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज आज नहीं कल पूर्णिमा के दिन में व्यास जी का जन्म हुआ, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। पूजा माने क्या, पुष्प चढ़ा देना पूजा नहीं है, उसको समझिए ये हृदय है। जैसे फूल सुकमल होता है, उसमें सुगंध होती है, मिठास भरी रहती है, मधु रहती है, वैसे अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए पहले गुरु जी को समर्पण करते हैं। गुरु वह है जो भगवान का सेवक है, जो शास्त्रों की समस्त बातों को मानता है, भजन में विशेष करके नाम भजन में प्रवीण है, और इन हृदयों को लेकर के राधा कृष्ण के जुगल के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, उसमें हमारी सहायता कर सकते हैं, वो गुरु। तो केवल फूल चढ़ाना ही नहीं, या पैसा चढ़ा दिया, 10,000 रुपये 20,000 रुपये दे दिए, सोने का उनका खड़ाऊ बना करके दे दिया, ये सब नहीं। वो क्या चाहते हैं इस चीज को समझने की चेष्टा की जाए, वो किससे प्रसन्न होंगे इस चीज को समझा जाए, वो कैसे प्रसन्न होंगे, जिस काम के लिए वो जगत में आए हैं, जिसके लिए भगवान स्वयं कृष्ण आए, उनके अवतार आए, सब भक्त लोग आए, किस लिए। हम लोग भूले भटके हुए जीव हैं, भगवान तो सुना है किंतु भगवान नाम के द्वारा करते करते हुए भगवान का दर्शन मिल जाएगा और हम पूर्ण मरोत हो जाएंगे, ऐसा विश्वास नहीं होता। आज कम से कम तो 100 200 की 400 आदमियों ने हरि नाम लिया। हरिनाम किस लिए लिया ये नहीं जानते, वो जानते हैं कि हमारी दुकान नहीं चलती, हमको बेटा नहीं होता, हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी नौकरी चाकरी अच्छी लग जाए, नौकरी है तो ठीक रहे, और हमको बच्चा हो, हमारी शादी हो जाए और हम जीवन में सुखी रहें, रुपए पैसे से भरपूर रहें। महाराज जी के पास में जाने से उनको तो लड़का हो गया और वो तो बड़े धन तो फल होगा नहीं, केवल आए और फूल चढ़ा दिया गुरु जी का और बस हो गया, और नया माला मिल गई और बस हो गया, ऐसे पूजा नहीं होती। भीतरतः में जाने की चेष्टा करो, समझो जो इसलिए हम कर रहे हैं। व्यास जी ने क्या शिक्षा दिया, गुरु जी क्या शिक्षा दे रहे हैं, अरे कम से कम यदि अच्छी तरह से खाओगे तो पेट भर जाने के बाद में फिर कोई खाने की इच्छा रहेगी, तो वैसे भगवान का नाम करने से विरक्ति जरूर आएगी संसार से, और जब विरक्ति आएगी सशक्त भगवान का तत्व का ज्ञान होगा, हृदय आनंदमय रहेगा। यदि हृदय में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, और नाम करते हैं और प्रॉब्लम भरा हुआ है, समस्याएं दिन पर दिन पर, तो हरिनाम कहाँ हुआ, भजन कहाँ हुआ। इन चीजों को समझो, जो हम बतला रहे हैं उसको समझने की चेष्टा करो। खाना पीना छोड़ दो, पीछे खाना, बच्चों को पहले स्कूल भेजना है तो उसको समझ लें, हरिनाम पहले करो, सवेरे 4 बजे उठ जाओ, भजन करते करते विरक्ति आएगी, चित्त प्रसन्न होगा, और नहीं होगा तो इसमें गलती है, हम ठीक से भजन गुरु जी का आदेश पाल नहीं कर सकते। तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में कैसे आएंगे, ऐसे नहीं आते। इसलिए कम से कम तो 100,000 नाम करो, और वो भी नाम कैसा कैसा नाम, उनके लीलाओं का चिंतन करते हुए करो। एक निश्चित रूप से हमारे वाल्मीकि जी ने 60,000 वर्ष तक राम 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 किया, और तब राम उनके हृदय में आ गए। ध्रुव जी ने 6 महीने तक बिना खाए पिए हवा भी बंद कर दिया, ध्यान लगाया, और गुरु का दिया हुआ मंत्र 6 महीने तक बिना खाए पिए सोए, सोया भी नहीं, और जपे, तब भगवान नारायण उनके हृदय में आ गए। प्रहलाद महाराज जी को देखो जे कैसे भजन किया, हमारे रूप सनातन जी ने कैसे भजन किया। ऐसे करने से फल होगा, अने तो जैसे चल रहे हैं कर रहे हैं, इसमें करोड़ों जन्मों के बाद भी कुछ होने का जो है होगा, यही धन मिल जाएगा, संपत्ति मिलेगा, अच्छा पति, ये तो हरि नाम करने से ऐसे मिल जाएगा, किंतु भगवान के चरणों में प्रेम ये कदापि नहीं। जो चाहते हैं इन सी चीजों को समझ करके कर, बस विशेष करके स्त्रियां इन चीजों को समझना नहीं चाहती, महिलाएं बहुत कम, और पुरुष भी ऐसे बहुत से हैं जो वो महिला ही हैं, रूप स्वरूप में हैं पुरुष जैसे बने, वो भी समझना नहीं चाहते। मुझे अभी हमें किसी से हाथ उठवा दूं, मन लगा करके तुम 8 बार रोज करते हो 8 राउंड माला, कज हाथ उठाओ तो हम देखेंगे जिसे कोई नहीं करते, बहुत थोड़े से आते। और कहें जैसे 1,00,000 नाम करने वाले सब ऐसे देखें, तो क्या इसका फल होगा। इन चीजों को समझो, बारीकी से समझो। फल चाहते हो, बीज बोया उसमें अंकुर निकला, 5-6 महीने के बाद में पत्ते आएंगे, डालियां आएंगी, 5-6 वर्ष 10 वर्ष के बाद में डालियां भर जाएंगी, पत्ते भर जाएंगे, उसमें फल लगेंगे, समय का महीना आएगा, तो ये आषाढ़ महीना है ना, क्या है, आम फल पकेंगे, और तब पके हुए फल आते हैं तो मधुर लगेंगे, ऐसे नहीं हो जाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंतराम कही, यदि रोज रोज इतना नाम है तो स्वप्न में भी भगवान का नाम होगा, होता है चलते फिरते उठते बैठते, तो फल कहां से मिलेगा। तो ये हम बड़े दुखी हैं, दुखी तरह का हम जो कहते हैं पालन नहीं करता, तब तक से सुखी कैसे बन जाएगा। इन चीजों को समझ, और समझ करके आज से ही अच्छी तरह से नाम करने की प्रतिज्ञा करो, भगवान का चिंतन करो। गणेश दुर्गा काली हम जानते हैं कि बहुतों के घरों में हैं, बहुतों के घरों में है, वो कृष्ण का एकांतिक भजन नहीं कर पाते, गणेश जी को छोड़ नहीं सकते, शंकर जी को छोड़ नहीं सकते, सरस्वती और वो काली मैया को, और विशेष करके आजकल मैया कौन, संतोषी मैया को छोड़ नहीं सकते, भजन क्या करेंगे, खा पत्ता। इन चीजों को समझो, आज हम लोगों की यहाँ तक हुई, कल हम लोग गुरु पूजा करेंगे, कल सवेरे 7 बजे से आरंभ होगा, पुष्प चढ़ेंगे, किंतु हृदय को देने की चेष्टा करो, हम जैसे जिस रूप में ढालना चाहते हैं उस रूप में ढलो, तब तक कुछ फल होगा, और नहीं तो फल नहीं होगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, मेरी बेटियों, बेटों और भाइयों बहनों, सभी हम जो कह रहे हैं इस पर ध्यान दे करके मन लगा करके कुछ हरिनाम करो। हम क्वालिटी क्वांटिटी नहीं चाहते, हम क्वालिटी चाहते हैं। एक भी नाम यदि मुख से निकल गया, एक भी नाम निकल गया, भाव सागर से तर जाए, एक भी नाम निकालने को चेष्टा। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदय परिगीतम श्रद्धा भृगुवर नरमात्मा, किसी तरह से निकल गया भाव सागर से। कल हम लोग 7 बजे से आरंभ करेंगे, और ग्रहण है, स्मार्ट लोग ग्रहण में पूजा टूजा नहीं करते, अरे ग्रहण में पूजा नहीं की तो क्या किया, खाक पत्थर किया, भागवत नहीं पढ़ेंगे, गुरु जी की पूजा, गुरु जी का कपाट सब समय खुला रहता है, गुरु पूजा होगी, व्यास जी की पूजा होगी, भगवान की पूजा होगी, भागवत रामायण का पाठ करेंगे, चैतन्य चैतामृत पाठ करेंगे, ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, इसलिए हम लोग ये सभी करेंगे। प्रसाद जिसको पाना है उसमें सूतक लगता है तो मत खाओ, जिसको विश्वास नहीं है मत खाओ, कोई बात नहीं है। किंतु गुरु पूजा करने में कोई दोष नहीं है, अपना गुरु पूजा करो, भगवान का पूजा करो, जिसको विश्वास है सूतक के पहले तक, जैसे कि 12 बजे 1 बजे तक अपना पूजा इत्यादि किया, उसके बाद में प्रसाद लिया। हम लोग स्मार्ट नहीं है, प्रसाद कभी भी अपवित्र नहीं होता, फिर भी हम लोग कुछ लौकिक रीतियों को भी मानते हैं जो भक्ति का विरोधी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर कीर्तन उस समय में होगा, शाम को हरी कथा होगी और सभी लोग मिल करके कीर्तन यहाँ पर करेंगे शाम को करीब करीब 9 बजे के करीब तक है। तो इसमें हम लोग बीच बीच में कीर्तन करेंगे, प्रवचन करेंगे, हरी कथा करेंगे और विधिवत सभी कार्यों का अनुष्ठान होगा। 12 बजे तक हम लोग पूजा इत्यादि सम्पन्न कर लेंगे, 12 बजे के अंदर में सभी लोग आ जाएंगे। आज जिनकी पूजा हो गई है वो तो हो गई है, और कल बाकी लोग पूजा करेंगे और पूजा का तात्पर्य समझेंगे। आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं, इसके बाद में आरती होगी और रामचंद्र जी और रामचंद्र विल एक्सप्लेन दैट टुडे इज द बर्थडे ऑफ व्यास, व्हाट ही डिड फॉर अस। ही हैज गिवन श्रीमद् भागवतम, डिवाइडेड वेदास इन 4 पार्ट्स, and thus Ramchandra will explain, or you should explain something, and then aarti will be done, and after that you should explain all these things, and tomorrow from morning 7 we'll do guru puja. Gaur prasthaya bhutale shri shrimad bhakti pragyan keshav iti nama.